ओम शांति। बहुत बहुत आप उल्लास नगर के भाई और बहने भाग्यशाली हैं कि जो पांडव भवन में जो बाबा की तपस्या भूमि है, चरित्र भूमि है, हमारी वरिष्ठ दादियों ने भी कई वर्षों तक उनके त्याग, तपस्या और सेवा की ये भूमि रखी हुई है। और इसीलिए हमारे विद्यालय के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बने हैं। उसके बाद ज्ञान सरोवर भी है, पीस पार्क है, शांतिवन है, संगम भवन है, बहुत सारे भिन्न भिन्न सेवा के स्थान बने हैं। लेकिन सबका आकर्षण का केंद्र कौन सा है? पांडव भवन। क्यों? यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशंस, वह हमें अपनी और चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं। यहाँ बाबा के कमरे में बैठते हैं, नेचुरल, स्वाभाविक बुद्धि एकाग्र हो जाती है। डीप साइलेंस में नेचुरल चले जाते हैं। ये यहाँ के वायुमंडल का, वाइब्रेशन का प्रभाव है। लेकिन ऐसा वायुमंडल बना कैसे है? यहाँ रहने वाले तपस्वी भाई बहनों की जो श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म, जिनसे यहाँ का वायुमंडल वाइब्रेशन पावरफुल और बिल्कुल चार्ज लगता है, ऐसा फील करते हैं ना। और इसीलिए सबको होता है कि भाई पांडव भवन में भट्टी करने का हमें चांस मिले, जहाँ बाबा मम्मा ने भी तपस्या की है। और उनके तपस्या और त्याग ने ही ये सेवा का आज जो हम विश्व भर में देख रहे हैं वो रंग लाया है। अब हम आते हैं कि यहाँ का वातावरण वाइब्रेशन तो बहुत पावरफुल है, लेकिन सदाकाल तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, प्रवृत्ति में है। सेवा स्थान पर हमें घर भी सेवा स्थान है, हमारा बिजनेस की ऑफिस भी या जॉब जहाँ करते हैं वो भी सेवा का स्थान ही है। हमें वहां भी वायुमंडल समर्थ बनाना है, पावरफुल बनाना है। इसलिए उसका आधार हम जहाँ रहते हैं वहां हम रहने वाले भाई बहनों की वृत्ति पर मदार है और आधार है उसी का। ये तो हम सब मानते हैं ना, बाबा की मुरली में भी आता है कि जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल, जैसी वृत्ति वैसे वाइब्रेशंस होंगे। अब सर्वप्रथम हम ये समझे कि भाई वृत्ति हम किसको कहते हैं, ये स्पष्टीकरण हो। वृत्ति वृत्ति हम कहते तो हैं शब्दों में, लेकिन ये समझे कि वृत्ति है क्या चीज। वृत्ति ये बहुत ही सूक्ष्म ते सूक्ष्म चीज है, और वह है हमारे आंतरिक अंतर आत्मा के भाव और भावनाएं, वह है वृत्ति। इसीलिए कई बार हम एक दूसरे से मिलते भी हैं तो कहते हैं कि इस व्यक्ति का भाव, सावधान रहना, इनकी वृत्ति ऐसी है। भाव कैसे है? क्योंकि वो बहुत ही सूक्ष्म आंतरिक चीज है जो फिर इंद्रियों के द्वारा धीरे धीरे वो बाहर प्रत्यक्ष होते हैं। तो ये भाव और भावनाएं हैं, ये है हमारी वृत्ति। आप देखेंगे कि बॉम्बे की ट्रेन में मुसाफरी करते हैं। अब जिनके अंदर बहुत सावधान रहते हैं ना, हम अपने पर्स, कीमती चीजों को ट्रेन में मुसाफरी करते हुए बहुत अलर्ट रहते हैं, क्योंकि अन्य कुछ व्यक्ति जो मुसाफरी कर रहे हैं उनका भाव, उनकी वृत्ति वह कुछ चोरी की है। अंदर से भाव, वो भी जर्नी सबके साथ कर रहे हैं, लेकिन उनके एक्शन से, उनकी आंखों का घूमना, उस डाउट से ऐसे चेक करना, देखना न, हम ध्यान देते हैं कि मेरे इर्द गिर्द खड़े हुए व्यक्ति, उसकी हलचल, मूमेंट किस प्रकार की है, जिससे उनके आंतरिक भाव का हमें पता चले। जिनको वो भाव कुछ चोरी का है ही नहीं, वो अपना शांत, स्थिर, स्टेबल खड़ा है। और जिनको किससे कुछ ले लेना है, वो भाव जहां है वो क्या करेगा, इतनी फास्ट अपनी नजर को इधर उधर इधर उधर, है ना, घुमाता रहेगा और देखेगा कि इस व्यक्ति का ध्यान कहीं और जगह पर इन्वॉल्व है, तो मुझे कब मौका मिले, कब मुझे चांस मिले कि वो चीज मैं उनसे क्या करूं, ले लूं। ये क्या है? चोरी की वृत्ति अंदर का, और किसी की चीज को ले लेने का, छिपा करके, छिप करके ले लेने का भाव, वही तो उसकी वृत्ति है। तो अब वृत्ति को समझा हमने, अब हमें अपने घर या जहां भी हम उपस्थित हैं, वहां के वाइब्रेशंस, वायुमंडल चेंज करना है। एक व्यक्ति मुरली में बाबा ने कहा है वरिष्ठ दादियों को कि आपके जहां कदम या आपकी जहां भी उपस्थिति होगी, वायुमंडल में खुशियां छा जाएगी, आनंद ही आनंद होगा, परिवर्तन हो जाएगा, चेंज होगा। तो वातावरण को, वाइब्रेशंस को बदलने वाले हम हैं, जिससे ही विश्व भी बदलेगा, चेंज होगा। इसलिए हमारी वृत्ति विश्व को श्रेष्ठ बनाना है, जिस स्थान पर है वहां के वायुमंडल को मुझे पावरफुल बनाना है, तो मेरे संकल्प भी श्रेष्ठते श्रेष्ठ चाहिए, क्योंकि उसी का ही मेरे अपने आप पर प्रभाव, और मेरे पर ही नहीं लेकिन मेरे फेस पर, और जो मुझे देखेगा उन पर भी उसका प्रभाव और मैं जहां उपस्थित हूं मेरे संकल्प मेरी वृत्ति के प्रकंपन सूक्ष्म में चारों ओर फैल रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म है। लेकिन हम ब्राह्मण आत्माएं तो उस वाइब्रेशन को क्या कर लेते हैं, जल्दी से कैच कर लेते हैं। इसलिए हमें अपने संकल्प हमारी सोच पर हमें ध्यान देना होगा। हमारे पास संकल्प की ऐसी गजब शक्ति है, बहुत पावरफुल ताकत हमारे पास हो मानव के पास तो संकल्प की शक्ति है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान ने भी ब्रह्मा ने भी संकल्प से सृष्टि की रचना की। आज हम जो भी इस विद्यालय की सेवाएं देख रहे हैं ये ब्रह्मा बाबा के संकल्प का संसार है, उनके संकल्प से आज भी सूक्ष्म में सेवाएं हो रही है। कई बार हम थोड़े विस्मृति में आते हैं और सोचते हैं कि ये सेवाएं नई नई समझो इन्वेंशन की या सेवाएं हम कर रहे हैं, समझते हम कर रहे हैं, हमने इन्वेंशन की। लेकिन बहुत गहराई में जाओ तो ये हमने नहीं की है, ये ब्रह्मा बाबा का संकल्प जो हमें स्पर्श कर रहा है, हमें टच कर रहा है, हमें वो छू रहा है। और अच्छा है कि मुझे ये सेवा करने का, ऐसा नया करने का मुझे टचिंग मिली, संकल्प आया मुझे और मैंने की। लेकिन वो बाबा के संकल्प हमें, हम अभी माध्यम है ना, हम सब बाबा के बच्चे निमित्त हैं। ब्रह्मा बाबा तो सूक्ष्म लोक में अभी सूक्ष्म देह में है, इस साकार लोक में सेवा करने के लिए तो साकार ब्राह्मण आत्माएं ही है ना, तो उनके माध्यम से बाबा अपना कार्य है वो करवा रहे हैं। मैंने इसलिए बताया कि संकल्प में कितनी शक्ति है। आप सबने भी दादियों के अनुभव सुने होंगे कि सुबह मुरली के बाद सैर करने के लिए बाबा ले जाते थे तो कई बार बाबा कहते थे कि विदेश में सेवा होगी, बच्चों को विदेश में जाना होगा। और आप मुरली में भी सुनते हो, जब विदेश सेवा नहीं शुरू हुई थी उसके पहले ही कि ये मुरलियां हैं कि ऐसे ऐसे चित्र बनाओ जो रोल करके लेके जाओ, ऐसे प्रोजेक्टर ले जाओ जिसके विदेश में ले जा करके आप आसानी से ले जा सकोगे और सेवा कर सकोगे। तब दादियां सोचती थी कि बाबा क्या कह रहा है, और उस समय पर लगता था कि ये पॉसिबल है, हम विदेश में जाएंगे, हम इंग्लिश भी नहीं जानते हैं, कैसे सेवा करेंगे। ठीक है, बाबा कहता है, लेकिन वो संकल्प साकार में ब्रह्मा बाबा का था। और हम सब आज देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में सेवाएं हैं वो हो रही है। दादी जान के निमित्त बने, जो इंग्लिश नहीं जानते थे। लेकिन आज कहां कहां दादी ने सेवा के लिए निमित्त बने हैं। तो ये संकल्प की, श्रेष्ठ संकल्प की जो ये वृत्ति, वो आज भी कार्यान्वित है, कार्य कर रही है। इसलिए बाबा तो कर ही रहा है, लेकिन हमें भी अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, श्रेष्ठ भावों द्वारा, आप देखेंगे कि श्रेष्ठ संकल्प भी कब उत्पन्न होते हैं, शुभ संकल्प भी कब आते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि शुभ सोचे, ट्राई भी करते हैं, कुछ शुभ संकल्प करते भी हैं, लेकिन फिर संकल्पों में चेंज आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो संकल्प भी उत्पन्न होने का आधार हमारे मन के भाव कैसे हैं, आपके प्रति रिस्पेक्ट का भाव, स्नेह का भाव यदि मेरे मन में है तो आपको देखने से ही मेरे मन में क्या होगा, शुभ भाव होने के कारण शुभ संकल्प आपके लिए मेरे मन में ऑटोमेटिक मशीनरी की तरह, अच्छे अच्छे विचार आपके प्रति मेरे मन में स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अंदर का भाव आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसा फील करते हैं ना, जिनके प्रति भी थोड़ा भी भाव नफरत का हो, घृणा का हो, ईर्ष्या का हो, उनको देख के चेक करो क्या सोच आता है, क्या संकल्प उत्पन्न होते हैं। वह न भी हो लेकिन उनकी याद भी आ गई तो भी उनके लिए हम क्या सोचना शुरू कर देते हैं, शुभ सोच पाते हैं, क्योंकि वो भाव मेरे शुद्ध नहीं है। इसलिए सबसे पहले मेरे भावों में, मेरी वृत्ति में स्वच्छता का होना बहुत ही जरूरी है। शुद्ध भाव, शुद्ध वृत्ति, जैसे छोटे छोटे इनोसेंट बच्चों को आप देखेंगे तो उनके प्योर भाव, प्योर वृत्ति हम फील करते हैं ना, महसूस करते हैं ना बच्चों की, उनको कोई तेरे मेरे का भाव नहीं है, कोई मेरा कोई पराया, वो चीज ही नहीं है उनमें। बिल्कुल अंदर से स्वच्छ, क्लीन, नीट है वो। तो हमारी वृत्ति भी बिल्कुल स्वच्छ होगी तो क्या होगा, भाव हमारे स्वच्छ है, वृत्ति स्वच्छ है तो संकल्प भी वैसे चलेंगे। आप देखेंगे एकदम क्लीन नीट पानी होता है तो उसके भीतर क्या है वह बिल्कुल स्पष्ट देख पाते हो, और मैला और गंदा पानी होगा तो नीचे क्या है पता नहीं। बॉम्बे में बहुत बारिश होती है, पानी भर जाता है, मैला पानी होता है तो चलने में, पानी में क्रॉस करने में डर लगता है कि कहाँ खड्डा है, कहाँ ड्रेनेज है। कार चलाने में भी होता है, पता नहीं चलेगा कि खड्डा है, कार कहाँ जा रही है, भीतर का पता नहीं चल रहा है। ऐसे वृत्ति अशुद्ध होगी तो हमारे भीतर क्या है वो कोई जान नहीं सकता, औरों को भी नहीं जान सकेंगे और अन्य कोई वो मुझे भी स्पष्ट पहचान परख नहीं पाएगा। क्यों? वृत्ति में अशुद्धि है, मैलापन है। इसलिए आज के समय में कहा जाता है कि भगवान को पहचानना फिर भी आसान है, लेकिन मनुष्य को समझना, जानना उसके भीतर क्या है, बाहर क्या है, उसका अंदाज नहीं आ सकता। क्यों? भाव में, वृत्ति में क्या है, कहां न कहां किसी न किसी प्रकार की अशुद्धि है। इसलिए वृत्ति का स्वच्छ होना ये बहुत ही जरूरी है। आप देखेंगे कि कई बार आप किसी टेंशन में हो, उदास हो, कुछ भी हो। कि कुछ समय पहले परिवार आया था बोरीवली में, भोजन कर रहे थे, जो छोटा बच्चा भी साथ में था, तो उसकी माँ कह रही थी कि हम लोग व्यस्त होते हैं या और प्रकार से मन की स्थिति होती है, लेकिन ये बच्चा ऐसा है ना, आके सामने ऐसी एक्शन और ऐसी बात करता है कि हमको हंसा देता है, हमको खुशी में ले आता है। तब देखो, क्योंकि स्वच्छ भाव है, वो सामने आते ही उनका हास्य, उसकी एक्शन, उनका बोलना हमारी उन बातों को दूर करके हम भी हंस पड़ते हैं। कितने भी सीरियस होते हैं ना, लेकिन ये सामने आके खड़ा होता है, हम लोग भी हंस देते हैं। चेंज हुआ वातावरण, वाइब्रेशन बदली हुए, ऐसे हमारी वृत्ति भी जितनी स्वच्छ होगी उतना जहां हम होंगे वहां वातावरण और वाइब्रेशंस क्या होंगे, प्योर, प्योरिटी के वाइब्रेशंस हैं, वह व्यक्ति फील करेगा, जिसको बाबा कहते हैं प्योरिटी की पर्सनालिटी। आपको देख करके ही, आपके समीप आने से ही, नजदीक आने से वह पवित्रता का करंट, वो फीलिंग्स वह आत्मा फील करेंगे और आप वहां उपस्थित रहेंगे तो वातावरण क्या होगा, बदल जाएगा, वाइब्रेशंस बदल जाएंगे। दूसरा है कि कल्याण की वृत्ति, और ये भी देखा कि कल्याण का भाव भी कब आता है, किसी के लिए कुछ करने की भावना, मर मिटने की भावना कब उत्पन्न होती है। जैसे साकार में बाबा थे, सुनाते हैं मुरली में, हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, अव्यक्त बाप दादा भी कहते हैं, बच्चे आपको इन भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती है, ये रोगियों के दर्द भरी आवाज गूंजती नहीं है, अशांत परेशान आत्माएं उनका चिल्लाना ये महसूस नहीं होता है। कहते हैं ना बाबा, और बाबा रात को झाक झाक गई, बाबा का चिंतन चलता था कि कैसे ये विश्व की आत्माओं को शिव बाबा का परिचय दूं, कैसे इनको दुखों से छुड़ाऊं, बांधेलियों के लिए मैं क्या करूं, अबलाओं के लिए क्या करूं, कुब्जाओं के लिए मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह से करूं, चिंतन चलता था। कब? इस विश्व की परिस्थिति को देखकर, हम भी देख रहे हैं आज आप और हम, तो अंदर से रहम की वृत्ति बनती है, रहम भाव, दया का भाव। यदि दया का भाव है, रहम भाव है, तब ही क्या हो सकता है, कल्याण का विचार आ सकता है कि मैं ये करूं, मैं इस तरह से करूं, वैसे करूं, कैसे करूं, एक कल्याण किस तरह से करूं। एक कब वृत्ति, कल्याण की वृत्ति कब बन सकती है, जब पहले क्या हो, रहम की वृत्ति हो, दया का भाव हो। और ये भावनाएं हमारी रहम की, कल्याण की, आप किसी को समझा रहे हो, ज्ञान समझा रहे हो, या आप अपने लौकिक में भी कोई लौकिक शिक्षा भी दे रहे हो। बाबा ने एक मुरली के शब्द मुझे याद आते हैं कि बच्चे शिक्षा दो, देनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, कहीं स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, परिवर्तन के लिए, कल्याण के लिए। लेकिन वो शिक्षा देने में आपकी कल्याण की भावना, वृत्ति वो महसूस करे, रहम भाव वो आत्मा फील करे कि ये मुझे कह रहे हैं, लेकिन उनको मेरे प्रति कितना स्नेह है, कितनी दया की भावना है मेरे प्रति, मेरे लिए कुछ कर छूटने की, कल्याण की भावना भी वो शिक्षा भी फील करे। लेकिन उसके साथ साथ ये हमारी भावनाओं को भी महसूस करे। और समझ में आता तो है ना, कोई भले हमें समझाए, लेकिन इनका मेरे लिए बहुत प्यार है, मेरा भला चाहते हैं ना, इसलिए मुझे इस तरह से प्यार से ये यास्त्रिक होके भी कह रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर ये मेरा कल्याण ही चाहते हैं। और ऐसी वृत्ति और ऐसे भाव वहां होते हैं तो वो शिक्षा भी कैसी लगती है, स्वीट लगती है, मीठी लगती है, अच्छी लगती है। या चलो वो भी ना हो तो कम से कम वो शिक्षाओं को सुनकर वो नाराज नहीं होगा, फील नहीं करेगा, क्योंकि समझता है मेरी अच्छाई के लिए, मेरी उन्नति के लिए, मेरी प्रगति का भाव कितना उसके मन के अंदर है, जिसके कारण मुझे ये कह रहे हैं। तो आप शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे ना, जहां बैठ के आप बात कर रहे होंगे, वहां का एटमोस्फियर स्नेहयुक्त, प्रेमयुक्त, शांत और भलाई से भरा हुआ फील होगा। थर्ड पर्सन भी यदि देखता है कि ये शिक्षा दे रहे हैं, तो आपकी विधि, आपका तरीका, उनसे भी वो प्रेरणा लेगी कि ये शिक्षा दे रहे हैं, कि कितना सुंदर ढंग है, कितना अच्छा तरीका है। और हम सीखते हैं ये किससे, बाबा से। ने देखा है कि कई प्रोग्राम बड़े हुए होते हैं, उसके बाद बाबा मिलते हैं, तो बाबा कहते हैं अब तक जो बच्चे आपने किया ये बहुत ही, उसके बाद फिर आप देखना कि बच्चे अब जब आगे करो तो उसमें इन इन बात का ध्यान रखना, या अभी करो तो आगे इस तरीके से सेवा करना। मतलब क्या हुआ? शिक्षक है, सिख दे रहे हैं हमें, लेकिन पहले क्या कहा कि आपने जो किया बहुत अच्छा किया। अंदर की वृत्ति करेक्शन ही देनी है, आगे के लिए गाइड करना है, लेकिन अंदर की वृत्ति कितनी क्लीन है, रहम की है, कल्याण की है बच्चों की। ये और बच्चे आगे इन बातों का ध्यान रख के सेवा करे तो शिक्षाएं। कई बार देखो बाबा मुरली में कई बार स्ट्रिक्ट शब्द भी यूज करते हैं। बाबा कहते हैं कि बंदर से मंदिर लायक बनाता हूं, तो हमको कहा तो बंदर ना, लेकिन फिर भी हम मुस्कुराते हैं। बाबा का ये कहना भी हमें क्या लगता है? मीठा। दूसरा कोई कह दे तो लाल पीले हो जाएंगे, चेहरा आंखें हाव भाव हमारे सारे बदल जाएंगे, क्योंकि उनकी कहने के पीछे की वृत्ति अलग है और बाबा जो हमें कह रहा है शब्द प्रयोग वही है, लेकिन अंदर की वृत्ति भाव बच्चों को गिराने का नहीं है, लेकिन आगे बढ़ाने का है। तो वायुमंडल अलग, वाइब्रेशन शिक्षा मिल रही है, लेकिन फिर भी अलग है, क्योंकि रहम की और कल्याण की वृत्ति है। चौथा है कि क्षमा। रहम और कल्याण भी तब हो पाता है कि उसके पहले क्या कर दो? माफ कर दो। कई बार किसी ने कुछ कहा है, हमारे साथ किया है, उसको हम माफ नहीं करते हैं और फिर सोचते हैं कि बाबा ने कहा है कि इनके लिए कल्याण का भाव रखो, रहम भाव रखो, लेकिन रखना ज्ञान से सोचेंगे, थोड़ा वो भाव भी क्रिएट करने की कोशिश भी हम करेंगे, लेकिन जब तक मैंने क्षमा नहीं की है, माफ नहीं किया है उस आत्मा को, तो फिर रहम का भाव वृत्ति मेरी बन नहीं सकती है। कई बार क्षमा करके भी हम याद रखते हैं मेमोरी में, भूलते नहीं। क्षमा करने वाला, क्षमा जिसको दी, फिर हम बोल पड़ते हैं, तेरे को पता है मैंने तेरे को कितनी बारी माफ किया है ना? कई बार किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया कि जिससे मुझे हर्ट हुआ, फील हुआ, तो फिर हम कह देते हैं। ज्ञानी है तो शब्दों से न बोले तो अंदर सोच लेते हैं कि जो इसने मेरे साथ जो किया है ये मैं जिंदगी भर भूलूंगा नहीं। अब जीवन भर दर्द वाला कांटा अंदर रख करके क्या करोगे? तकलीफ ही होगी, तकलीफ होगी ना? कांटा चुभ गया, अंदर रखो, निकालो नहीं, धीरे धीरे और वेदना तकलीफें क्या होगी, बढ़ेगी। इसी तरह से इस प्रकार का जो व्यवहार, उसको भी हम भुलाते नहीं हैं। जीवन भर याद रखेंगे, जीवन भर तकलीफ में ही पाऊंगी। करने वाला तो करके भूल गया, लेकिन जीवन भर लॉस किसको? मुझे है। जिसके कारण बाबा कहते हैं कि बीती को बीती करो, या फुल स्टॉप, स्टॉप कर दो। अब उस दर्द को, उस खराबी को वहां स्टॉप करो, अभी आगे न बढ़ाओ। और तब ही हम क्या कर सकेंगे, माफ कर सकेंगे, क्षमा कर सकेंगे। क्षमा की वृत्ति भी चाहिए, क्षमा भाव भी हमारे अंदर चाहिए। तब वायुमंडल को हम, वृत्ति को, वृत्ति से हम वायुमंडल को भुला दिया ना, उस बात को रखा नहीं, तो मेरे चेहरे के हाव भाव, मेरे एक्शन, मेरे बोल, चलो माफ कर दिया ना भाई, अंदर रखा, तो फिर सोच, बोल, दृष्टि, व्यवहार, ये वातावरण को क्या करेंगे। आज परिवार के अंदर एक व्यक्ति भी गुमसुम हो जाता है, बाकी सब ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन घर का माहौल, वातावरण, वाइब्रेशन अलग। घर के अंदर एक हंसाने वाला व्यक्ति होता है, रमणीक, निर्दोष, आनंद कराने वाला, तो वातावरण चेंज, वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो मदार तो हमारे पर है ना, इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें हरदम वातावरण तो कैसा चाहिए, जहां हम है 24 घंटा संचो पर भी नहीं रहेंगे, न मधुबन में रहेंगे, हम जहां हैं वहां मुझे वो खुशनुमाला, खुश मिजाज वाला, पवित्र, शांत, शुद्ध वातावरण मुझे बनाना है। इसलिए मेरे संकल्प ऐसे क्षमा भाव के होना, ये बहुत ही जरूरी है। पांचवी बात, गुणग्राही वृत्ति, कुछ ले लेने की वृत्ति है ना। बाबा ने बहुत अच्छी तरह से जी में कहा है, बाबा भी समझता है कि द्वापर से लेकर के इनके जो संस्कार बने हैं हम आत्माओं के, अब वो छूटना मुश्किल है, लेकिन उसको क्या करो, ट्रांसफर कर दो, परिवर्तन कर दो। लोभ वृत्ति है वो रहेगी, लेकिन ज्ञान खजाने को इकट्ठा करने का लोभ मुझे हो, लोभ नहीं छूटा, लेकिन इस चीज का लोभ था, उसके बजाय ज्ञान को एकत्रित करने का, अनुभवों को मेरे लाइफ में एकत्रित करने का लोभ भले हो। इसलिए बाबा देखो, देह अभिमानी और आत्म अभिमानी, अभिमानी छूटने वाला, लेकिन देह का अभिमान नहीं, आत्मा का नशा, आत्मा का गौरव, उसकी खुशी, उसकी खुमारी, तो ट्रांसफर करना है। लेने की वृत्ति तो है, किससे कुछ मिलता है तो बाबा के घर से छोटी भी सौगात मिलती है हमें, कितनी, किससे मिल रहा है ना, कुछ किससे भी मिले, जहां से भी मिले, लौकिक में भी कुछ मिलता है तो खुशी होती है, अलौकिक में भी मिलता है सेंटर पर चले गए, एक टोली मिल गई, तो भी क्या होता है, खुशी हो जाती, मिला, ग्रहण, स्वीकार। तो मैं गुणों को ग्रहण करने की वृत्ति मेरे में हो। बाबा हंस और बगुले में यही तो डिफरेंस बताते हैं, दोनों चीजें हैं। हंस बगुले जहां हैं वहां मोती भी है और बाकी भी चीजें हैं, लेकिन हंस की वृत्ति क्या है, मोती चुगने की, उसको ग्रहण करने की, और बगुले की वृत्ति अलग है। और जिसकी जैसी वृत्ति होगी उसकी दृष्टि वही चीज को क्या करती है, खोजती है, है ना? गुणग्राही जहां भी कहीं जाए तो कहां से गुण मिलेगा, किससे मिलेगा, उसको क्या करता है, खोजता है। और जिसको जो चाहिए ना वो मिलता भी है उसको। जिनको गुण ही ग्रहण करने हैं तो वो दोनों चीजें हैं व्यक्तियों में, गुण अवगुण, लेकिन वृत्ति गुण को ग्रहण करने की है तो वो गुण को ही उसकी नजर देखती है और एक्सेप्ट करती है, उसको ग्रहण करती है। गुणों को ही ग्रहण करने की वृत्ति वो वायुमंडल को क्या करेगी। आप सारा दिन गुण देखते रहते हो, आपके मुख से भी क्या होगा, गुणों का, क्योंकि जो देखते हो वो बोलोगे जरूर आप, किसी के भी पेट में वो रहता नहीं है। जो देखा कहीं न कहीं किसी न किसी के पास वो वर्णन में आएगा। गुण ही देखे तो क्या होगा, गुण ही वर्णन में आएगा। और जहां गुणों का वर्णन होता हो और चिंतन होता हो अंदर ही अंदर, तो वायुमंडल बदल जाएगा। एक दूसरे के अवगुणों का देखना शुरू करो, चिंतन शुरू करो, वर्णन शुरू करो, एटमोस्फियर चेंज। इसलिए वायुमंडल और वाइब्रेशंस श्रेष्ठ बनाने के लिए गुणग्राही वृत्ति चाहिए। अब जब ये बात करती हूं तो मुझे चंद्रमणि दादी याद आती है। कई बार उनके साथ रहने का, टूर करने का मौका मिला तो उनको मिलने के लिए कोई आ जाए, मैं थी, और जब जब मैंने देखा कोई व्यक्ति सामने आया, उनको देखने के साथ ही उस आत्मा का जो गुण था ना, कहती दिव्या ये हमारा जो भाई है ना अथक सेवाधारी है, ये हमारा भाई है ना बहुत स्नेही है, ये हमारा भाई है ना हड्डी हड्डी सेवा करता है, ये ऑलराउंडर है। मैंने जब जब देखा उनके साथ रही, कोई भी आया उनको देख के तुरंत उसके गुण उनके चित्त पर और उनके मुख पर आ जाते थे। अब बताओ ये जहां हो तो वहां का वायुमंडल वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली समर्थ और शक्तिशाली हो गए, क्योंकि गुणग्राही वृत्ति है। अब आते हैं छठी बात, शुभ भावना और शुभ कामना। गुणों को देखने से ही शुभ भावना उत्पन्न होती है। बाबा ने भी कहा है कि शुभ भावना शुभ कामना रखो, कोई क्या भी है और कैसा भी है, वो जैसा है वैसा है, मेरे मन में उनके प्रति भाव कैसे हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट मैं देखती हूं कि मुझे है, बाकी छोड़ो बात। सामने बाबा आ जाता है, हम क्या थे, कैसे थे, आज भी हम क्या है, लेकिन बाबा ने क्या रखी हम सब में, शुभ भावना और शुभ कामना रखी है, उससे ही हमें ऊंचा उठाया है। और वो वृत्ति में ना हो तो वो भाव भावनाएं जाग नहीं सकती है। इसलिए शुभ भावना सबके लिए रखने से, कई बार हम सोचते हैं कि मैंने उनके प्रति शुभ भावना रखी लेकिन क्या बदली हुई, वो चेंज हुए नहीं हुए, मैं सोचती हूं ना हुए, लेकिन मेरी तो हैबिट बन गई, मेरी तो नेचर हो गई शुभ भाव को उत्पन्न करने की, मेरी तो आदत बन गई ना, मेरे तो अच्छे संस्कार बन गए शुभ सोचने का, वो ना बदला, समझो। लेकिन मुझे तो बेनिफिट हुआ ना कि मेरी नेचुरल नेचर बन गई, वो जिसको देखूं शुभ भाव, शुभ कामनाएं। और शुभ भावना और कामनाएं कई बार वो वृत्ति इसलिए काम नहीं करती क्योंकि हमें अपने आप में डाउट, मेरी शुभ कामना से बदल जाएगा व्यक्ति, मेरी शुभ भावनाएं काम करेगी, मुझे शक है, पहले ही डाउट है। और जिन में रखती हूं शुभ भावना उनमें भी डाउट है, बदलेगा ये, बदले ऐसा है नहीं। चलो बाबा ने कहा है ना, बाबा ने कहा है इसलिए मैं रख रही हूं, लेकिन मैं देखूं कि बाबा ने कहा मेरे अंदर शुभ भाव उत्पन्न हो रहा है। कई बार होता है कि मैंने कहा आपने कर लिया, आपकी इच्छा नहीं थी, आपका करने का भाव नहीं था, लेकिन मुझे ना ना कह सके, या आपने सोचा कि बाबा का कार्य है ना क्यों कहें, चलो करना चाहिए, ज्ञान समझ से वो काम किया, सेवा की, लेकिन एक मन से दिल से करें और कहने में वो कार्य करें, दो में डिफरेंस होगा, अंतर होगा। इसलिए न हम अपने में न किसी में डाउट रखें, लेकिन हम क्या करें, शुभ भावना और शुभ कामना की वृत्ति रखें। फिर है बेहद की वृत्ति, हम इस हद में रहने वाले हैं ना, बाबा बेहद में चला गया इस बंधन से मुक्त होकर, विशाल वृत्ति, बेहद की वृत्ति। इसलिए बाबा कहते हैं कि संकल्प सारे एक जगह पर बैठो, भाई सारे विश्व की आत्माओं के लिए शांति का दान दो, शक्तियों का संकल्पों से दान दो, विश्व के गोले को सामने रखो, बाबा से मुझे प्राप्त हो रहा है, यहां से मैं सारे विश्व की आत्माओं को दे दे, बेहद में विश्व के लिए सोचो, विश्व महाराजन बनना है ना तो सारे विश्व के लिए सोचना पड़ेगा ना, बेहद में जाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो विश्व महाराजन विश्व की यहां सेवा नहीं की तो वहां वो प्रजा आपकी सेवा, सारी प्रजा राजा को कैसे रिस्पेक्ट देगी या सेवा करेगी, यहां करनी पड़ेगी ना संगम पर, इसलिए बाबा कहते हैं कि बेहद की वृत्ति रखो, सदा बेहद में रखो। फिर है सर्व को सहयोग देने की वृत्ति भाव। आपको याद होगा कि बाबा जी की मुरली में कहा है कि आपकी जेब में सहयोग की नोटे है ना होनी चाहिए, वो धन के होते हैं ना नोट। ब्राह्मण परिवार है चाहे अन्य है, लेकिन शुभ भावनाएं, कामनाएं, रहम, कल्याण, शांति, सुख, खुशी, शक्ति, उमंग, उत्साह, जिसको जो जरूरत है, इन सूक्ष्म चीजों का मैं क्या करूं, सहयोग दूं, और उसकी बहुत जरूरत है। स्थूल चीजें तो फिर भी मिल जाती है, क्योंकि इन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया, इन्होंने मेरे में हिम्मत भरी। मैं नहीं समझती थी कि मेरे में हिम्मत है और मैं कर सकूं, लेकिन इन्होंने मेरे में हिम्मत भरी, उमंग भरा मेरे में, उत्साह मेरे में भरा, शक्तियां उससे भरते हैं हम आत्माओं में। तो ये है समय पर सहयोग देना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पर सहयोग, उसे जीवन भर याद रहता है। दादी एक बारी प्रकाशमणि दादी सुना रही थी कि यज्ञ में पहले कोई व्हीकल नहीं था, सबसे पहले एक माता ने एक व्हीकल दिया था। आज उनसे बहुत बढ़िया चीजें आ गई गाड़ियां, उस समय की उस जमाने की गाड़ी, लेकिन यज्ञ में उसने दी। आज इतनी गाड़ियां जाने के बाद भी दादी को वो गाड़ी याद आ रही है, जबकि नहीं थी एक भी व्हीकल, तब जिसने जो दिया सहयोग, समय पर सहयोग। बाबा कहते हैं कि पानी की प्यास लगी है उसको पानी दे दो, 56 प्रकार के भोजन उसके काम के नहीं है, और टाइम पर सहयोग का इंपॉर्टेंट है। सामने वाली व्यक्ति की भी वृत्ति हमारे लिए क्या हो जाती है, भाव और भावनाएं बदल जाएगी। हमारी शुभ वृत्ति से सामने वाली आत्माओं की सहयोग देकर के उनकी वृत्ति में भी परिवर्तन हम कर सकेंगे। फिर है आगे बढ़ाने के लिए, कई बार सेवा के क्षेत्र में भी लौकिक में ऐसे होता है भाई हम आगे बढ़े, या सेवा साथी का एक ग्रुप होता है सेवा करने वालों का, किचन में सेवा करने, हार्डवर्क सेवा, प्लानिंग करने वाले, धन से सेवा करने, हर प्रकार की सेवा होती है और एक संगठन होता है सेवा करने वालों का, लेकिन उसमें भी एक दूसरे को हमें क्या करना है, आगे बढ़ाने का भाव हो। ये फिक्र न हो कि ये मेरे से आगे बढ़ जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, मुझे मान कम मिलेगा, मेरा नाम कम लेंगे, मेरी शान कम होगी, ने? ये वृत्ति उस संगठन और वातावरण वाइब्रेशन को चेंज कर देती है। लेकिन जहां एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना है वहां वातावरण क्या होता है, चेंज। और दादियों में हमने, आपने, हम सब ने ये देखा है, हर एक की अपनी अपनी विशेषता है, हर एक का अपना अपना कार्य है, लेकिन वो दादी कहेगी पहले आप दादी, इतना ही रिस्पेक्ट, वो कहेगी कि नहीं पहले आप, है ना? आगे रखने की वृत्ति है। उसके कारण कितना, जब बड़ा संगठन होता है दादियों का, जब ये देखती हैं व्यवहार, तो पूरा वातावरण स्नेहमय प्रेममय और शिक्षा प्रदान एक वातावरण हो जाता है, सिख भी मिल जाती है और कितना अच्छा वातावरण लगता है कि अरे एक दूसरे के प्रति कितना रिस्पेक्ट है, कितना प्यार है, कितना फेथ है, कितना विश्वास है, होता है ना वायुमंडल, दादियां दो मिली चिटचाट होती है, है प्यार से पूरा माहौल बदल जाता है, वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की हमारी भावनाएं वृत्ति वही वातावरण को क्रिएट करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि घर को सेंटर को एक शांति का कुंड बनाओ, पवित्रता का कुंड, और उससे अभी वर्तमान समय तो बाबा यही कह रहे हैं, ऐसा माहौल बना दो कि जो व्यक्ति उस माहौल में एंटर हो वो माहौल उसको घेर ले शांति का, खुशी का, प्रेम का, वो किसी भी मन की स्थिति में आया हुआ हो लेकिन वो वातावरण उनकी मानसिक स्थिति को चेंज कर दे। मैंने आप सब भी महसूस करते हो, लेके आते हो सेंटर पर, उस माहौल में आके कितना अच्छा लगता है, कुछ न समझे ये समझती यहां सुकून सा मिल रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, क्या न समझे लेकिन कुछ यहां मेरे को चैन आ रहा है, राहत मिल रही है, रूह को राहत फील हो रही है। तो ये वाइब्रेशन से सेवा हमारे वायुमंडल से सेवा होती है। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस हम अपनी दिनचर्या में करें और जहां है वहां ऐसा माहौल बनाएं जिसमें स्व की सेवा भी और दूसरों की भी कम बोल के कार्य ज्यादा हो सकेगा, वाइब्रेशंस और वायुमंडल पावरफुल होगा, तो क्योंकि फीलिंग महसूस कर लेगा ना वो, तो हमें बोल बोल के रियलाइज कराना, महसूस कराना, ये शक्ति एनर्जी हमको कम यूज करनी पड़ेगी और सेवा अधिक हो सकेगी। ओम शांति।